आत्मा ब्रह्म इस महावाक्य में आत्मा पद का जीव वाच्य है और ब्रह्म पद का ईश्वर वाच्य है। ब्रह्म पद का शुद्ध वाच्य नहीं, ईश्वरी वाच्य है। जह चतुरंग में प्रतिपादन कराए हैं। पूर्व किन्याई दोनों पद की लक्षणा है। लक्ष्य अर्थ परोक्ष नहीं, किंतु इस अर्थ को जनावने को अयम पद है। अयम पद मने प्रत्यक्षता वाचक है। अयम अपना दिश किन कहवागे, ये वस्तु है जेड़ी सामने सानू दिखाई दे रही, उन्हों कहवागे ये। तो जेड़ा आत्मा है उन्हों अपना सानू दिखाई दे रहा अपना स्वरूप, तो उन्हों के क्या अयम, अयम आत्मा ब्रह्म, ठीक है ना। अयम कहिए सबके अपरोक्ष आत्मा ब्रह्म है, जह वाच्य का अर्थ है। अहम ब्रह्मास्मि इस वाक्य में अहम पद का जीव वाच्य है और ब्रह्म पद का ईश्वर वाच्य है। दोनों पद की चेतन भाग में लक्षणा, मैं ब्रह्म हूँ जह वाच्य का अर्थ है। प्रज्ञान मनंतम ब्रह्म इस महावाक्य में एक चौथा ये है। इस महावाक्य में प्रज्ञान पद का जीव वाच्य है, ब्रह्म पद का ईश्वर है। पूर्व की न्यायी लक्षणा, लक्षणा जो ब्रह्म आत्मा सो आनंद गुण वाला नहीं किंतु आनंद रूप है। इस अर्थ को जनावने को आनंद पद है। आत्मा से अभिन्न आनंद रूप है जह वाक्य का अर्थ है। आत्मा से भिन्न अभिन्न, अभिन्न कर लेना, आत्मा से अभिन्न ब्रह्म आनंद रूप है। अभिन्न मैंने ना भिन्न इति अभिन्न, जो भिन्न नहीं है एक ही है, एक ही है। हाँ, आत्मा से अभिन्न, आत्मा से अभिन्न ब्रह्म आनंद रूप है जह वाक्य का अर्थ है। जैसे महावाक्य में भाग त्याग लक्षणा है, तैसे अन्य वाक्य में सत्य ज्ञान आनंद पद भी शुद्ध ब्रह्म को भाग त्याग लक्षणा से बोधन करे हैं। शक्ति से नहीं, शक्ति वृत्ति से नहीं, लक्षणा वृत्ति से। काहे ते शुद्ध ब्रह्म किसी पद का वाच्य नहीं है। शुद्ध ब्रह्म जड़ा है सदा ही की हो जाएगा, ओ हो जाएगा कि शुद्ध ब्रह्म किसी पद का वाच्य नहीं हो, लक्ष्य अर्थ हो जाएगा, वाच्य अर्थ नहीं होगा, ठीक है ना। जह सिद्धांत है जानते सारे पद विशेषण के वाचक है, विशिष्ट के वाचक है और शुद्ध के लक्ष्य हैं। माया की अपेक्षित सत्यता और चेतन की निरपेक्ष सत्यता मिली हुई सत्यपद का वाच्य है, निरपेक्ष सत्य लक्ष्य है। बुद्धि वृत्ति रूप ज्ञान और स्वयं प्रकाश ज्ञान दोनों मिले तो ज्ञान पद का वाच्य और स्वयं प्रकाश भाग लक्ष्य है। विशेष मंद जन्य सुखाकार सात्विक अंतःकरण की वृत्ति, देख लो सुख कदों मिलेगा, जब अंतःकरण की वृत्ति सात्विक हो जाएगी तभी। विशेष मंद जन्य सुखाकार सात्विक अंतःकरण की वृत्ति और परम प्रेम का आस्पद स्वरूप सुख की वृत्ति और परम प्रेम का आस्पद स्वरूप सुख, इन दोनों मिले आनंद पद का वाच्य और वृत्ति भाग को त्याग के स्वरूप भाग लक्ष्य है। इस रीति से सर्व पद की शुद्ध में लक्षणा संक्षेप शरीर में प्रतिपादन करी है। संक्षेप शरीर मैंने ब्रह्म सूत्र सर्वज्ञ मुनि ने लिखा है एक ग्रंथ। अब तीन प्रकार की लक्षणा दसी है ना, जाति अजाति और भाग त्याग। अब उनकी स्वरूप दिखा रहे, गंगा में ग्राम जहती लक्षणा जा ठौर लख सोन धावे लक्षणा अजहती जनाइये। करे गंगा में ग्राम, तेरा पिंड किसे है गंगा ते, ऐसे किसी ने कहता भाग सिंह जा कोई स्कूल जा किसी दे खेत किथे है रोड ते, है ना, ऐसे उन्हें कह दिया तेरा पिंड किथे, उन्हें गंगा ते भी मेरा पिंड। ते गंगा दे, गंगा दा अर्थ मुख अर्थ वाच्य अर्थ की हो गया, गंगा नदी प्रवाह, उहदे ते ग्राम ते नहीं पिंड ते नहीं हो सकता ना। ते फिर लक्ष्य लक्षणा दे नाल अर्थ लगाओगे, शक संबंधी लक्षण, शक के अर्थ जो है वो उहदा संबंध किहदे नाल, किनारे नाल, ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਗਮ ਹੋਏਗਾ। ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਕਸ਼ਣਾ ਲਗਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਜਾਹਤੀ ਲਕਸ਼ਣਾ। ਗੰਗਾ ਮੇ ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਹਤੀ ਲਕਸ਼ਣਾ ਜਾਂ ਠੌਰ ਲੱਖ ਸੋਨ ਧਾਵੇ ਲਕਸ਼ਣਾ ਅਜਾਹਤੀ ਜਣਾਈਏ। ਜਣਾ ਸੋਨ ਧਾਵੇ, ਲਾਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਘੋੜਾ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਾਲਾ, ਲਾਲ ਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਜਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਅਜਾਹਤੀ ਲਕਸ਼ਣਾ। ਸੋਈ ਜਹ ਵਸਤੂ ਇਹਾਂ ਲਕਸ਼ਣਾ ਹੈ ਭਾਗ ਤਿਆਗ। ਸੋ ਜਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸੋ ਜਹ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਹ ਵਸਤੂ ਇਹਾਂ ਲਕਸ਼ਣਾ ਹੈ ਭਾਗ ਤਿਆਗ, ਦੂਜੋ ਨਾਮ ਜਾਹਤੀ ਅਜਾਹਤੀ ਸੁਣਾਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਕਸ਼ਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਹਤੀ। ਅਜਾਹਤੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਤਮਸੀ ਆਦਿ ਮਹਾਂਵਾਕਨ ਮੇਂ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਣਾ ਨਾ ਜਾਹਤੀ ਅਜਾਹਤੀ ਬਤਾਈਏ। ਦਾ ਤਤਮਸੀ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਵਾਕਯ ਹੈ, ਤਤਮਸੀ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚਾਰੇ ਮਤਲਬ ਵੇਦ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮਹਾਂਵਾਕਯ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋ ਗਏ ਆਦਿ ਪਦ ਤੋਂ। ਤਤਮਸੀ ਆਦਿ ਮਹਾਂਵਾਕਨ ਮੇਂ ਭਾਗ ਤਿਆਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਤਮਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਵਾਕਯ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੇਂ ਕਿਹੜੀ ਲਕਸ਼ਣਾ ਲੱਗੇਗੀ? ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਣਾ ਨਾ ਜਾਹਤੀ ਅਜਾਹਤੀ ਬਤਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਵਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਹਤੀ ਲਕਸ਼ਣਾ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ ਅਜਾਹਤੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਕਹੂੰ ਪਾਦੁਕੋ ਨਾ ਵਾਚੇ ਜੂ ਬਖਾਨੇ ਵੇਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹੀਂ ਵੀ ਵਾਚੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲਕਸ਼ ਅਰਥੀ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਚੇ ਜੂ ਬਖਾਨੇ ਵੇਦ ਜਾਂ ਤੇ ਸਰਵ ਪਦਰ ਮੇਂ ਰੀਤੀ ਜੂ ਲਿਖਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰੀਤੀ ਲਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਹੜੀ? ਲਕਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਇਆ ਮਾਹੀ ਸੱਤਤਾ ਜੂ ਔਰ ਭਾਂਤੀ ਭਾਖੀਅਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਹੀ ਸੱਤਤਾ ਸੂ ਔਰ ਭਾਂਤੀ ਭਾਖੀਏ। ਮਾਇਆ ਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਤਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸੱਤਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੱਤਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲਕਸ਼ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸੱਤਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਚਿਆ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲਕਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਮਿਲੇ ਸੱਤ ਪਦ ਵਾਚੇ ਜੂ ਮੁਨੀ ਭਾਗਤ ਜਹਿ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਹੀ ਸੱਤਤਾ ਸੂ ਲਕਸ਼ ਭਾਗ ਰਾਖੀਏ। ਦੋਨੋਂ ਮੇਂ ਮਿਲੀ ਸੱਤ ਪਦ ਵਾਚੇ ਸੂ ਭਾਗਤ ਮੁਨੀ, ਇਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸੱਤਤਾ ਉਹ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਾਚੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਚੇ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਹੀ ਸੱਤਤਾ ਸੂ ਲਕਸ਼ ਭਾਗ ਰਾਖੀਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਤਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲਕਸ਼ ਅਰਥ ਹੈ, ਲਕਸ਼ ਅਰਥ ਜਾਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੁੱਧੀ ਬਿਰਤੀ ਸੰਵਿਤ ਦਵੇਵ ਮਿਲੇ ਗਿਆਨ ਪਦ ਵਚ ਸਵਿਤ ਸਰੂਪ ਲਕਸ਼, ਬੁੱਧੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਆਖੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿਛੇਦ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਖੀਏ। ਬੁੱਧੀ ਬਿਰਤੀ ਸੰਵਿਤ ਦਵੇ ਮਿਲੇ ਗਿਆਨ ਪਦ ਵਾਚੇ, ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਪਦ ਦਾ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਵਾਚੇ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਵਿਤ ਸਰੂਪ ਲਕਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਆਖੀਏ। ਬੁੱਧੀ ਬਿਰਤੀ ਲਕਸ਼ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹੀ ਲਕਸ਼ ਅਰਥ ਹੋਗਾ। ਆਤਮਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁੱਖ ਵਾਚੇ ਪਦ ਆਨੰਦ ਕੋ, ਆਤਮਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਵਾਚੇ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਲਕਸ਼ ਅਰਥ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ, ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਸੁੱਖ। ਵਿਸ਼ੇ ਸੁੱਖ ਤਿਆਗ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁੱਖ ਤਿਆਗ ਦਿਓਗੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਸੁੱਖ ਤਿਆਗ ਆਤਮ ਸੁੱਖ ਲਸ਼ ਆਖੀਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਆਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਾਤਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਲਕਸ਼ ਅਰਥ ਸੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵਾਚੇ ਅਰਥ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਂਵਾਕਯ ਮੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਕੋ, ਮਹਾਂਵਾਕਯ ਮੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਕੋ ਦੋਨੋਂ ਪਦ ਨਵੇਂ ਲਕਸ਼ਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੀ। ਤਹਾਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਹੈ ਏਕ ਪਦ ਮੇਂ ਲਕਸ਼ਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਏ ਤੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਦ ਮੇਂ ਲਕਸ਼ਣਾ ਮਾਨਣੇ ਕਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪਦ ਮਿਲੇ, ਦੋ ਪਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਤਤਪਦ ਔਰ ਤੁਮ ਪਦ, हर वाक्य में चार महावाक्य है, चार महावाक्यों के दो ही पद तो होंगे, तत्पद और तुम पद। तो वो कह रहा एक पद के नाल लक्षण लगा लो, दोनों ना क्यों लगा रहे जी? कोई शंकावादी शंका कर रहा है, ठीक है ना। वो की कह रहा है, एक पद में लक्षणा अंगीकार किए से ही विरोध दूर होवे है, दो पद में लक्षणा मानने का प्रयोजन नहीं। ना एक दे नाल लक्षणा लगा लो तो विरोध दूर हो जाएगा, दोनों ना तो कोई प्रयोजन नहीं बनने वाला। एक ही पद में लक्षणा माने नहीं विरोध, दो पद में लक्षणा निष्फल कहत सुबोध। तो एक पद में लक्षणा माने, एक पद में लक्षणा मानोगे तो विरोध दूर हो जाएगा, विरोध नहीं रहेगा। दोनों पद में लक्षणा निष्फल कहत सुबेद, मतलब अच्छी बुद्धि वाले जो है वो कह रहे दोनों पद में लक्षणा क्यों लगा रहे हो, एक पद में लक्षणा लगा के अर्थ निकल आएगा। सुबोध कहिए सुज्ञ, दोनों पद में लक्षणा निष्फल कहते हैं, कहे थे एक ही पद में लक्षणा माने तो विरोध दूर हो जावे है। जाका भाव जय है, यद्यपि सर्वज्ञता आदिक विशिष्ट की अल्पज्ञता आदिक विशिष्ट के साथ एकता बने है, नहीं बने तथापि एक पद का लक्ष्य जो शुद्ध ताकि विशिष्ट के साथ एकता बने है। दृष्टांत, ये शंका है, इसको सत नहीं समझ लेना। शुद्ध ब्रह्म, देखो आगे दृष्टांत दे रहा, दृष्टांत क्या दे रहा है, ये दृष्टांत भी ठीक से समझ लेंगे ना तो तावी गल बन जाएगी, ठीक है ना। वो कह रहा है शूद्र मनुष्य ब्राह्मण है, ठीक है। इस रीति से शूद्रत्व धर्म विशिष्ट मनुष्य की ब्राह्मणत्व धर्म विशिष्ट के साथ एकता कहना विरुद्ध है। ओदे जड़े धर्म है ओदे धर्म ओदे नाल है, वो ब्राह्मण दे धर्म ब्राह्मण दे नाल है, उन्हां दी तुसी एकता करोगे तो नहीं हो सकती। और दोनों दे धर्म त्याग दोगे तो पुरुष पुरुष मनुष्य मनुष्य एक है, जे मनुष्य धर्म दे नाल एकता करोगे तो वह तो हो जाएगी, वह भी मनुष्य है, वह भी मनुष्य है। तो जे जाति दे नाल एकता करोगे फिर नहीं हो सकती। इस वास्ते ओदा जिहड़े धर्म है वह हटा दो और ब्राह्मण दे धर्म जड़े वह हटा दो तो पुरुष पुरुष एक है। यही हाल जीव दा और ब्रह्म दा। ब्रह्म दे जड़े धर्म है, ईश्वर दे जड़े धर्म है सर्वज्ञता आदिक वह हटा दो, और जीव दे जड़े धर्म है अल्पज्ञता आदिक उन्होंने पिछे कर दो, तो चेतन चेतन भाग दोनों एक ही है। यही कह रहा हूं, मनुष्य ब्राह्मण है। इस रीति से शूद्रत्व धर्म सहित शुद्ध मनुष्य का ब्राह्मणत्व विशिष्टता कहने में विरोध नहीं। देखो अब ठीक ते आ गया, तैसे अल्पकता आदिक धर्म विशिष्ट चेतन की और सर्वज्ञता आदिक धर्म विशिष्ट की एकता विरुद्ध भी है, परंतु जीव पद का यही है ना, जीव वाच्य पद और ईश्वर वाच्य पद की चेतन में लक्षणा करके चेतन मात्र की सर्वज्ञता आदिक धर्म विशिष्ट के साथ व अल्पज्ञता आदिक धर्म विशिष्ट के साथ एकता कहने में विरोध नहीं। जे तुसी धर्म त्याग दोगे तो सर्वज्ञता दी धर्म त्याग दो, अल्पज्ञता दी धर्म त्याग दो, ते चेतन चेतन एक, जैसे उन्हें दस्या एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय है, उहदे विच ब्राह्मणत्व धर्म है उहदे विच क्षत्रियत्व धर्म है, तो तुसी उन्हां दी एकता करोगे तो हो जाएगी, एकता नहीं हो सकती। तो ब्राह्मण दे धर्म जिहड़े ब्राह्मणत्व हटा दो और क्षत्रिय दे विच क्षत्रियत्व धर्म हटा दो तो फिर पुरुष पुरुष एक है, पुरुषत्व धर्म दोनों में है, पुरुष पुरुष एक है और जाति एक नहीं है। जाति नूं हटा दोगे तो पुरुष पुरुष एक ही है। ऐसे ही जिहड़े ईश्वर दे धर्म है उन्हां नूं पिछे कर दो, और जिहड़े जीव दे धर्म है उन्हां नूं पिछे कर दो हटा दो, तो चेतन भाग दोनों एक ही एक है, असंग है। भी घड़ा घटा आकाश है, एक घड़ा लाल है एक नीला है एक पीला है, एक ऐसा ही है टूटा फूटा जिहा, तो उन्हां दे विच जिहड़ा घड़ा बहुत सुंदर है उहदे विच आकाश सुंदर नहीं है, आकाश ऐसा ही है। और जिहड़ा घड़ा टूटा है उहदे विच आकाश टूटा नहीं है, आकाश ऐसा ही है। जैसे ये बाहर वाला आकाश है ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੜੇ ਦੋਨੋਂ ਤੋੜ ਦੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਟੁੱਟਾ ਘੜਾ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਤੋੜ ਦੋਗੇ, ਆਕਾਸ਼ ਆਕਾਸ਼ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਅੰਤਾਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਅੰਤਾਕਰਨ ਦੇ ਹੈ। ਅੰਤਾਕਰਨ ਕੇ ਧਰਮ ਹਟਾ ਲਓਗੇ ਤੋ ਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੀਵ ਪਦ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਦ ਮੇ ਲਕਸ਼ਣਾ ਮਾਨਣ ਮੇ ਕੋਈ ਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਬ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਅਬ ਇਸਕਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰੇਂਗੇ। ਸਮਾਧਾਨ, ਲਕਸ਼ਣਾ ਜੋ ਕਹੇ ਏਕ ਪਦ ਮਾਹੀ ਤਾਂਕੂ ਜਹ ਪੁੱਛੀਏ, ਦੋਨੋਂ ਪਦ ਮੇ ਕੌਣ ਸੇ ਲਕਸ਼ਣਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇੱਕ ਪਦ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਦ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਤਤਪਦ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਮ ਪਦ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਦੋਨੋਂ ਪਦ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪਦ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਦ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਤਤਪਦ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਤੁਮ ਪਦ ਨਾਲ? ਕਿਹੜੇ ਪਦ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਪਦ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਈਏ ਪਦ? ਤਤਪਦ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਤੁਮ ਪਦ ਨਾਲ ਕਰੀਏ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲਛਣਾ ਜੋ ਕਹੇ ਏਕ ਪਦ ਮਾਹੀ ਤਾਂਕੂ ਜਹ ਪੁੱਛੀਏ, ਦੋਨ ਪਦ ਮੇ ਕੌਣ ਸੇ ਲਕਸ਼ਣਾ, ਦੋਨੋਂ ਪਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਣਾ ਕਰੀਏ? ਪ੍ਰਥਮ ਵਾ ਦਵਿਤੀਆ ਮੇ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਦ ਮੈਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੁਤੀਆ ਪਦ ਮੇ ਕਰੀਏ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਹੇ ਤਾਹੇ ਵਾਖਤ ਜਹ ਵਾਕਿਅਨ ਕੋ ਹੋਗੋ ਵਿਰੋਧ ਮੂੜ ਲਛਣਾ। ਜੋ ਕਹੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਦ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹਾਂ ਵੇਦ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹਾਂਵਾਕੇ ਆ, ਤਿੰਨ ਵੇਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਵਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਾ ਪਦ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੀਵਵਾਚਕ ਪਦ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਪਦ ਬਾਅਦ ਮੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਹਾਂਵਾਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਪਦ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੀਵ ਪਦ ਬਾਅਦ ਮੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਣ ਲਗਾਓਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੀਨ ਵਾਕੇ ਮਹਿ ਜੀਵ ਵਾਚ ਪ੍ਰਥਮ ਪਦ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੀਨ ਵਾਕੇ ਮੱਧ, ਤੀਨ ਵਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਵੇਦ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਮਿਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਵਾਚ ਪ੍ਰਥਮ ਪਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਤਮਸੀ ਆਦਿ ਜਾਵੇਂ ਆਦਿ ਪਦ ਈਸ਼ਲਸ਼, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਤਮਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਂਵਾਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪਦ ਆ ਗਿਆ? ਈਸ਼ਵਰ ਵਾਚਕ ਪਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਪਦ ਵਾਚਕ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਦ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਣਾ ਕਰੋਗੇ ਦੱਸੋ? ਪ੍ਰਥਮ ਵਾ ਦਵਿਤੀਯ ਕੋ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜਾਂ ਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬਾਖਤ ਦੇ ਪਦ ਮੇ ਲਛਣਾ ਸੁਲਛਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਪਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਣਾ ਕਰੋ। ਉਹੀ ਸੁਲੱਛਣਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹਾ ਸੂਪਸਰਗ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਹੈ ਜਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਲਛਣਾ ਸੁਲੱਛਣਾ, ਜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਉਪਸਰਗ ਆ ਗਿਆ ਸੂ, ਸੂ ਮਣੇ ਸੁਸ਼ਟੂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ, ਸੁਸ਼ਟੂ ਮਣੇ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਲਕਸ਼ਣਾ ਤਭੀ ਹੋਗੀ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਪਦੋਂ ਮੇ ਲਕਸ਼ਣਾ ਲਗਾਓਗੇ, ਤਬ ਏਕ ਪਦ ਮੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ। ਟੀਕਾ, ਜੋ ਏਕ ਪਦ ਮੇ ਲਕਸ਼ਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਪੂਛੇ, ਦੇ ਪਦਨ ਮੇ ਸੇ ਕੌਣ ਸੇ ਪਦ ਮੇ ਲਕਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਪਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਦ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹੜੇ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਜੋ ਐਸਾ ਕਹੇ ਸਰਵ ਮਹਾਂਵਾਕਿਅਨ ਮੇ ਪ੍ਰਥਮ ਪਦ ਮੇ ਲਕਸ਼ਣਾ ਹੈ ਦਵਿਤੀਯ ਮੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਐਸਾ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਚਾਰ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਵੇਦ ਕੇ, ਚਾਰੇ ਵਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਣਾ ਲਗਾ ਦਿਉ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਉ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਵਾ ਦਵਿਤੀਯ ਮੇ ਲਕਸ਼ਣਾ ਸਰਵ ਵਾਕਿਅਨ ਮੇ ਹੈ ਪ੍ਰਥਮ ਮੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਰਵ ਵਾਕਿਅ ਮੇ ਪ੍ਰਥਮ ਪਦ ਮੇ ਲਕਸ਼ਣਾ ਹੈ ਦਵਿਤੀਯ ਮੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਐਸਾ ਕਹੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਦ ਮੇ ਲਗਾ ਲਓ ਦੂਸਰੇ ਨਾ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਜਾਂ ਐਸੇ ਕਹਿ ਦਿਉ ਜਦ ਵਾ ਦਵਿਤੀਯ ਪਦ ਮੇ ਲਕਸ਼ਣਾ ਸਰਵ ਮੇ ਹੈ ਪ੍ਰਥਮ ਮੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਪਦ ਮੇ ਕਹੋ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੇ ਕਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਮੇ ਕਹੋਗੇ? ਆਪ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੁ ਹੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਜਹ ਵਾਕਿਅ ਮਣੇ ਹੇ ਮੂੜ ਲਕਸ਼ਣਾ ਪ੍ਰਥਮ ਵਾ ਦਵਿਤੀਏ ਮੇ ਜੋ ਨੇਮ ਤੇ ਲਕਸ਼ਣਾ ਸਰਵ ਵਾਕਿਅ ਮੇ ਮਾਨੇ, ਤੋ ਵਾਕਿਏ ਕਾ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਠੀਕ। ਕਾਹੇ ਤੇ ਤੀਨ ਵਾਕਿਅ ਮੱਧ ਕਹੀਏ अहम ब्रह्मास्मी। आ देखो आ वेद वाक्य नोट कर लेना, चार वेद के जेडे चार महावाक्य है वह दस रहे हैं। पहला है अहम ब्रह्मास्मी, मैं ब्रह्म हूँ। प्रज्ञाना मनम मनंदम ब्रह्म, ठीक है। तीसरा अयम आत्मा ब्रह्म, तो चौथा कड़ा तत्वमसी। ये वेद के चार महावाक्य है, तो जेडे तीन दसे है इन्हों का जो पहला पद है ना वह जीववाचक है, और इन तिना का दूसरा पद ईश्वरवाचक है, और जो तत्वमसी है वह जो पहला पद ईश्वरवाचक है, और आखिरी जोड़ा पद है दूसरी दूसरा वह जीववाचक है। तो जे तो निजम लक्षण लगाओगे पहले पहले नाल, तो तिना के नाल जे तीन महावाक्य उन्होंने जीव के नाल लग जाएगी, और चौथे के नाल ईश्वर के नाल लग जाएगी, फिर भी अर्थ नहीं बनेगा। जे दूसरे नाल लगाओगे तो दूसरे जेडे तीन महावाक्य है वह ब्रह्म के नाल लग जाएगी ईश्वर के नाल, और जोड़ा चौथा वह जीव ने लग जाएगी, जीव पदवाचक जो शब्द है वह लग जाएगी, फिर भी अर्थ नहीं बनेगा। तो फिर क्या करना है, इन तीन महावाक्य में जीव पद जीववाचक पद प्रथम कहिए पूर्व है, और तत्वमसी जा वाक्य में आदि पद कहिए प्रथम पद, ईश्वर लक्षण कहिए ईश्वर का बोधक है, ठीक है। जो पूर्व पद में लक्षणा सारे माने, देखो जो पूर्व पद में, पूर्व माने पहले पद में, जो पूर्व पद में लक्षणा सारे माने तो तीन वाक्यन का तो जय अर्थ होवेगा, चेतन सर्वज्ञता आदि विशिष्ट अंश सारे ईश्वर है। और ये हो गया तिना का जेडे तीन पहला ले ले यह अर्थ हो जाएगा, और तत्वमसी का की हो जाएगा, तत्वमसी वाक्य का जह अर्थ होगा चेतन अल्पगता आदि विशिष्ट संसारी जीव है, यह अर्थ आ जाएगा। ये तो पहले ही बनया पाया, तो की विशेष अर्थ निकलिया फिर उदा काहे ते तीन वाक्यन में पूर्व जीव पद जीववाचक पद है, ताकि चेतन भाग में लक्षणा और द्वितीय जो ईश्वरवाचक पद तामे वाच्य का ग्रहण, और तत्वमसी में तीन ईश्वर पद ईश्वरवाच्य पद ताकि चेतन भाग में लक्षणा और द्वितीय जीव पद जीववाचक पद ताके वाच्य का ग्रहण। इस रीति से लक्षणा का नियम करें तो वाक्यन का परस्पर विरोध होवेगा, तैसे सर्व वाक्यन के द्वितीय पद कहिए अगले पद में लक्षणा माने, जो दूसरे पद में माने तो तीन वाक्यन में पूर्व जो जीव पद ताके वाच्य ग्रहण ते उत्तर ईश पद की चेतन भाग में लक्षणा जाते अल्पगता आदिक धर्म विशिष्ट चेतन है। देखिए ना चेतन भाग नू की कह देता, अल्पगता दी धर्म वाला बन जाएगा, जह तीन महावाक्य का अर्थ होवेगा, ठीक है। तत्वमसी में आदि ईश पद ताके वाच्य का ग्रहण, और द्वितीय जीव पद की चेतन भाग में लक्षणा जाते सर्वगता आदि का धर्म विशिष्ट चेतन है, जह तत्वमसी का अर्थ होने ते परस्पर विरोध ही होवेगा। इस रीति से प्रथम व द्वितीय पद में लक्षणा का नियम बने नहीं, जाते सुलक्षणा कहिए सुंदर सुंदरी है लक्षणा जितने, ते आचार्य द्वे पद में लक्षणा भागत है, दोनों नु करो। और जो ऐसा कहे प्रथम व द्वितीय पद में लक्षणा है जह निजम नहीं करे हैं, किंतु सर्व वाक्यन में जो ईश्वर वाच पद है तामे लक्षणा है जह निजम करे हैं, सो ईश्वर वाचक पूर्व होवे अथवा व उत्तर होवे जाते वाक्य का परस्पर विरोध नहीं। जा पहला दूसरा विकल्प करता, पहला विकल्प किया सी उन्हें, जे प्रथम पद में लक्षणा लगाओगे तो पहले पद जड़े आ तीन महावाक्य वह जीववाचक पद आ जाएंगे, और चौथा आ जाएगा ईश्वरवाचक। जे दूसरे नु लगाओगे तो दूसरे दे तीन महावाक्या दे आ जाएंगे पहला ईश्वरवाचक पद, और चौथे का आ जाएगा जीववाचक, तो विरोध हो जाएगा। तो कहिंदा इदा नहीं, सारे जेड़े ईश्वरवाचक पद है ना उन्हां ते लक्षणा लगा लो, जीववाचक में अलग लगा लो, वो अगे हो चाहे पिछे होने, ये निजम ना करो। तो फिर की कह रहे हैं, जो ऐसा कहें प्रथम व द्वितीय पद में लक्षण है जय निजम नहीं करें, किंतु सर्व वाक्य में जो ईश्वर वाचक पद ता में लक्षणा है जय निजम करें हैं, सो ईश्वर वाचक पूर्व व उत्तर होवे, जाते वाक्यन का परस्पर विरोध नहीं ताका समाधान कह रहे हैं। ईश पद ही लक्ष्य को कहे सर्व अनर्थ की खान, गे होए सूरती वाक्य में है पुरुषार्थान। ईश पद ही लक्षक है, जे ईश पद नु लक्ष्य मनोगे ठीक है ना, सर्व अनर्थ की खान तो जेड़ा जीव है वो सर्व अनर्थ की खान बना दोगे, तुसी पहले ही बनी बैठा हो ठीक है ना। गे होए सुरती वाक्य में है पुरुषार्थान, वो ही गे होगा फिर सुरती में, सुरती वाक्य में गे पदार्थ केड़ा बन जाएगा, जीव जीव बन जाएगा, तो फिर तुहानू जेड़ा मेहनत का फल मिलेगा, मेहनत का फल तो नहीं मिलेगा, पुरुषार्थ नहीं मैंने मेहनत का फल नहीं मिलेगा ठीक है ना। जो ईश्वर वाचक पद को ही लक्ष्य कहें तो सर्व अनर्थ अल्पगता पराधीनता जन्म मरण से आदि लेके, जो ये ठीक से सुनने वाला है ठीक है, मन नूं अपने पास ही रख लो, घर नहीं जान देना, ठीक से समझ लेना। जो ईश्वर वाचक पद ही लक्ष्य कहिए हैं तो सर्व अनर्थ अल्पगता पराधीनता जन्म मरण से आदि लेके, जो दुख के साधन तिनकी खान जो संसारी जीव, सो सुरती वाक्य में गे होवे है, वो है सुरती वाक्य में गे मने ध्याता ध्यान दे, जिसको जानना है ज्ञाता ज्ञान गे, जानने योग जो पदार्थ है उसको गे कहेंगे, तो जानने योग पदार्थ जीव ही हो जाएगा, वो तो आप पहले अपने आप जीव बनाई बैठे हैं, तो फिर इन्ने स्यापे करन दा की फायदा होया लक्षण लगाउण दा, कोई गल भी नहीं बनी। जाते पुरुषार्थ कहिए मोक्ष की हानि होवेगी, जय जाका भाव जय है जो ईश्वर वाचक पद में ही लक्षणा माने तो मां वाक्य का जय अर्थ होवेगा, तत्पद का लक्ष्य जो अद्वै असंग माया मल रहित चेतन, सो काम कर्म अविद्या के अधीन अल्पग अल्प शक्ति प्रसिन्न पुण्य पाप सुख दुख जन्म मरण गमना गमन आदि अनंत अनर्थ का पात्र है, ये अर्थ बनेगा, ये अर्थ बनेगा ठीक है ना। सो महावाक्य का ऐसा अर्थ होवे तो जिज्ञासु को इसी अर्थ विषय बुद्धि की स्थिति करनी होवेगी, कि जैसा अर्थ तुसी लगाओगे तो बुद्धि की स्थिति ऐसी करोगे ना, जे अपने आप नूं ब्रह्म समझोगे तो ब्रह्म इहदा महावाक्य का अर्थ लगेगा अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो आत्मा ये ब्रह्म है, तो ऐसी बुद्धि की स्थिति बनाओगे, ऐसी बुद्धि की स्थिति बनाओगे तो मरण समय फिर ऐसी बुद्धि रहेगी, जो मरण समय बुद्धि रहेगी जेदी जैसी भी तो मर करके उसी लोक नूं जाएगा, तो जदों ताड़ी ए बुद्धि रहेगी मरण समय भी मैं ब्रह्म हूँ मैं ब्रह्म हूँ, तो किहदे विच लीन होगे ब्रह्म दे विच, ते जे तुसी अल्पग अल्प शक्तिमान ऐसे अपने नूं जाणोगे तो मर करके की बनोगे, फिर यही तो पहले बने बैठे, फिर तो फिर अपना ग्रंथ पढ़ने का की प्रयोजन सिद्ध हुआ है ना। देखो की कह रहे हैं, जिज्ञासु की इसी अर्थ विषय बुद्धि की स्थिति करनी होवेगी, ठीक से समझ लेना, और जामे बुद्धि की स्थिति होवे, जामे बुद्धि की स्थिति होवे प्राण वियोग से अनंतर, प्राण वियोग से माने मरण से बाद, प्राण वियोग से अनंतर ताही को प्राप्त होवे है, अंत समय जहां मति वो ही गति, अंत समय जिथे बुद्धि चलगी वही बंदा बहादुर दा, तुसी कथा सुनी होएगी, बंदा बहादुर जी जो दसम भगवानों दे पास गए हैं ते वो पलंग ते बैठा सी, तो वो ते बाहर नू गया सी, ते दसम भगवान जाके लेट गए, उन्हें वो दे है सी जादू मंत्र, बथेरा ने जोर लाया नहीं, उन्हें एक तीर रखता नहीं, वो दूजा हिलिया उत्ते रखता, चारे पावां ते एक एक तीर भगवान ने रख दिते, फिर कित्थे चुकिया जाए, आके चेला बन गया। मैं शॉर्टकट सुनाऊंगा ठीक है ना, तो फिर ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਵੱਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਆਂਦੀ ਅੱਛਾ, ਆਂਦੀ ਉਹ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ, ਕੱਟਿਆ ਤੋਂ ਉਹ 'ਚ ਕੀੜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਆਂਦਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਇਹ ਕੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਂਦਾ ਇਸ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਂਦਾ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਫਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਗਤੀ ਗਈ, ਬੁੱਧੀ ਗਈ, ਤੇ ਕਿਆ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀੜਾ ਬਣਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸਿਮਰੇ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੇਂ ਜੋ ਮਰੇ, ਸਰਪ ਜੂਨ ਵਲ ਵਲ ਅਵਤਰੇ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਸਿਮਰੇ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੇਂ ਜੋ ਮਰੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਜੂਨ। ਲੈ, ਸੂਰ ਦੇ ਕਿਤਨੇ, ਸੂਰੀ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਲਈ ਜਾਓ, ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਪ੍ਰਾਣ ਵਿਯੋਗ ਮੈਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਾਣ ਮੈਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਵਿਯੋਗ ਮੈਨੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿਯੋਗ ਸੇ ਅਨੰਤਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਜੈਸੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੈਸੀ ਧਾਰਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲੇ ਉਹੀ ਜੂਨੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੱਤੇ ਪੈਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਆਖਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਸ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੇ ਚਿੰਤ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਆ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਰੇ ਆਖਰੀ ਵੱਲ ਮਤ ਜਾਓ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੋ, ਆਪੇ ਆਖਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਖਰ 'ਚ ਕੈਸੇ ਚੇਤੇ ਆਜੂਗਾ? ਆਖਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਚੇਤੇ ਆਊਗਾ?